السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے عید. عید کا لفظ نکلا ہے عین الف دال سے, عین الف دال, اور بعض کہتے ہیں کہ عین و دال, اور اس کے معنی ہیں وہ عید جو ہر سال لوٹ کر آتی ہے, اعادہ کرنے والی, بار بار آنے والی. اور عیدیں ہمیں دو ملی, ایک ہے عید الفطر اور دوسری ہے عید الاضحیٰ. اور عید الفطر فا تو را, یہ ہے اس کا روٹ, اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, جیسے آپ افطاری کرتی ہیں تو کیا کرتی ہیں, روزہ کھول دیتی ہیں. تو وہ عید جس میں روزوں کے دوران اگر کچھ کمی بیشی ہو گئی ہے, نماز, روزہ اور قرآن کی تلاوت, تراوی میں, صدقہ خیرات میں, افطاری سحور میں کچھ بھی کمی ہو گئی ہے, فطر شگاف ہو گیا ہے, تو کیا کیا جاتا ہے کہ نماز عید سے پہلے پہلے فطرانہ دیا جاتا ہے, عید الفطر. تو فطرانہ دینے کے دو مقصد ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ ہم سے جو غلطی ہو گئی ہے, جو کوتاہی ہو گئی ہے, جو شگاف پڑ گیا ہے, کمی ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے صدقہ دینے کی کہ غریب جو مسلمان ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں ساتھ شامل ہو سکے. اور عید الاضحیٰ دوسری عید ہے جس کو قربانی کی عید بھی کہتے ہیں. تو اصل میں دعاد ہا یا سورج خوب چڑھ آیا ہو, اسی سے دہیتن دن کا چڑھنا, اور ذبیحہ کو بھی کہتے ہیں دہایا. ادھا تو اس کی جمع ہے ادھا اور اداہی, اسی طرح یوم الادھا, تو صحیح تلفظ کیا ہے ادھا, اور اس کے معنی ہے قربانی, اس کے معنی ہے جانور ذبح کرنا. تو وہ عید جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت, جو قربانی کی سنت ہے, اس کو زندہ کرنے کے لیے, اس کو تازہ کرنے کے لیے ہر سال مسلمان بھی مناتے ہیں. اور عید کے ساتھ ہی خوشی کا تصور آنے لگتا ہے, کیونکہ انسانیت کا کوئی تصور جذبات سے الگ نہیں ہے. انسان مادہ اور روح کا مرکب ہے. جہاں پہ انسان اپنے جسم کی سہولت کے لیے ترقی کرتا ہے, کام کرتا ہے اور بہت سی سہولتیں, آسائشیں حاصل کرتا ہے, وہاں پہ روح کی تسکین کے لیے, اپنے جذبات کی ٹھنڈک کے لیے بھی بہت سے کام کرتا ہے. اور بہترین انسان کون ہے جو خوشی میں خوش ہو اور غم کے وقت غم سے متاثر ہو, غم زدہ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انسانی جذبات کے اسلوب پر کار فرما تھے. آپ کے اندر فطری طور پر انسانی جذبات پائے جاتے تھے اور آپ کی زندگی ایک متوازن زندگی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفریحات کو جائز حدود میں جائز سمجھتے تھے, اور آپ نے تفریح بھی کی, آپ نے خوشی کے موقع پر خوشی بھی منائی. کیوں؟ خوشی منانا انسانی طبیعت کا ایک تقاضا ہے, انسان کی فطرت ہے, اور دین جو ہے انسانی فطرت کو محسوس بھی کرتا ہے اور انسانی فطرت کو پورا کرنے کے لیے ضرورتوں کو پوری کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ کچھ حدود اور شرائط بتاتا ہے, کچھ آداب بتاتا ہے کہ خوشی کے موقع پر ہم کس طرح سے خوشی منائیں. دین ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ ہم ہر وقت مصنوعی وقار کے ساتھ رہیں, ہر وقت مردہ دلی کے ساتھ اور چہرہ بسورا ہوا, بہت ہی بجھے بجھے سے رہیں. اور کردار کی جو کشش ہے, جو انسان کی فطرت ہے, اس کو بالکل ہی ختم کر دیں. دین اس کو پسند نہیں کرتا, بلکہ دین کیا چاہتا ہے کہ جائز مواقع پر خوشی منائی جائے. دین اس کا پورا پورا حق دیتا ہے, لیکن یہ بھی چاہتا ہے کہ ایسے موقع پر ہمیشہ بلند حوصلوں کے ساتھ, تازہ ولولوں کے ساتھ اور نئی امنگوں کے ساتھ تازہ دم ہو کر اس خوشی کے موقع کو منائیں. जायज मौकों पर खुशी का इजहार ना करना, खुशी मनाने को दीनी वकार के खिलाफ समझना, ये दरअसल दीन के फहम से दूरी का नाम है, दीन की समझ ना होने का नाम है। और बेहतरीन लोग कौन होते हैं? जो मुतवाजन जिंदगी बसर करते हैं। और हमारा लकब क्या है? उम्मत वस्त, वो उम्मत जो मोतदिल है, ना तो राहिब बन गए कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहाड़ों पे चले गए, जंगलों में चले गए। और बाज लोग ऐसे होते हैं, घर में शादी हो रही है और खुशी का मौका है, ईद का मौका है, और कोई कामयाबी मिली है, कोई बेटा हुआ है, या फिर ये कि कुरान मजीद बच्चे ने हिफ्ज कर लिया है, कुरान मुकम्मल कर लिया है, कोई और ही बड़ी खुशी का मौका है, लेकिन घर वाले उस वक्त खुशी मनाने को या खुशी के इजहार करने को समझते हैं ये दीन के खिलाफ है। एक बात आप याद रखें कि अगर हमने खुशियों को खत्म कर दिया तो गोया के हमने जिंदगी से फूलों को खत्म कर दिया, फिर कांटे ही कांटे हैं, गोया के फिर जिंदगी बोझल ही बोझल है, गमों तले दबी हुई है। और जिस निजामे हयात में तफरीहात की गुंजाइश ना हो, जहां खुशियां ना हो, जहां रंग ना हो, जहां कौसो कजा ना हो, जहां पानी की आबशार ना हो, फूलों की महक ना हो, जिंदगी की रौनकें ना हो, वहां इंसानियत फिर दम तोड़ देती है, फिर निजामे हयात ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता, फिर वो खत्म हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफरीहात को पसंद करते थे, घुड़सवारी को आपने पसंद किया, आपने तैराकी की, स्विमिंग यानी राइडिंग करना, स्विमिंग करना आप खुद भी करते थे, और बाज़ूकात आप दो दो सहाबियों का जोड़ा बना देते थे कि तैराकी करते हुए जाएं और फिर जैसे मुकाबला, इसी तरह घुड़सवारी में आपने एक दफा हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के साथ मुकाबला किया। और उस वक्त हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा दुबली पतली थी, तो वो आगे निकल गई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे रह गए, यानी बीवी के साथ दौड़ का मुकाबला। और फिर कुछ वक्त गुजर गया, जब फिर आपने कहा कि आयशा दौड़ लगाते हैं, जब हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से दौड़ लगाई, अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा पीछे रह गई, और आपने कहा कि वो जो तुम आगे निकल गई थी, आज इसका बदला हो गया, आज मैं आगे निकल गया। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि तब मेरा जिस्म फुरेरा था, मैं पतली थी जब मैं आगे निकली थी, अब मैं मोटी हो चुकी थी, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए। तो इस तरह आप क्या करते थे, अपने घर वालों के साथ भी हंसी मजाक करते थे, आप मिजाक करते थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा के साथ भी बैठे हुए हैं, खजूरें खा रहे हैं, तो क्या किया हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने कि खजूरें खाते जा रहे थे और गुठलियां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखते जा रहे थे, यानी दोनों जो थे वो खजूरें खा रहे थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मजाक किया ना, वो क्या कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि आपने इतनी खाई, तो आपने कहा कि तुम गुठलियों समेत खा गए, क्योंकि उन्होंने अपने सामने गुठलियां नहीं रखी हुई थी ना। इसी तरह एक बद्दू था, वो गांव से आया करता था मिलने के लिए, एक दफा जब वो आया, आपने देखा कि बाजार में है खड़ा हुआ, आपने पीछे से उसके आंखों पर हाथ रख लिया और वो बूझता रहा, और यहां तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बताया कि मैं हूं ना, वो आपको पहचान ना सका। तो ये क्या है, यानी फितरत के मुताबिक हंसी, खेल, खुशी, मोहब्बत और मिजाह हमें मिलता है, इसकी बहुत सी मिसालें हैं। लेकिन अब मौका है ईद का, और ईद क्या है, गोया के बहार है, फिर बादे बहार आई, इकबाल गजल खां हो, गुंचा है अगर गुल हो, गुल है तो गुलिस्तां हो। और ईद जो है वो क्या होती है, तीरा शबों को फिर से जगमगाए हिलाले ईद, संदेशाए बहार बन के आए हिलाले ईद, तमन्ना है कि देखें नई शहर की रंगीनी, ऐ काश नवीदे सुबह लेकर आए हिलाले ईद। के ये जो ईद अब आ रही है, ईद उल अधा और कुर्बानी की ईद की जो है वो आमद आमद है, और बड़ी तमन्ना है कि उम्मते मुस्लिमा के लिए ये ईद नवीदे सुबह बन जाए। आओ मिलकर मांगे हम दुआएं ईद के दिन, बाकी ना रहे कोई गम ईद के दिन, हर आंगन में खुशियों भरा सूरज उभरे और चमकता रहे हर आंगन ईद के दिन। तो ये खुशी का मौका कैसा मौका है, रंगो निगहत का जब सेले रवा है हर सू, ईद का जश्न है, खुशियों की फरावानी है, सर सराते हुए रेशम के ये मलबूस हसी, रंग है सुर्ख कहीं और कहीं धानी है, गले मिलते हुए अहबाबो अजीज आपस में, मेजबानी है कहीं और कहीं मेहमानी। ऐसे मौकों पर जहाँ पे कपड़े बनाए जा रहे हैं, चूड़ियां पहनी जा रही हैं, मेहंदी का इंतजाम किया जा रहा है, और साथ ही कुर्बानी और दावत, कोई दावत दे रहा है और कोई दावत ले रहा है, और तय हो रहा है कि हम क्या क्या करेंगे, तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो पहली बात हमें क्या पता चली कि खुशी मनानी चाहिए। क्यों मनाएं? इसलिए कि वो फितरत है, इसलिए कि वो अल्लाह के नबी की सुन्नत है। लेकिन कैसे मनाएं वो हम देखते हैं, कुछ शराइत और कुछ हुदूद, ताकि हम ईद मनाते वक्त कोई गलती ना कर लें। इसलिए कि अगर किसी के यहाँ भी कोई भी जब खुशी का मौका है, जैसे कि ईद का मौका है, तो हमें क्या करना चाहिए कि ईद मनानी चाहिए, खुशी मनानी चाहिए, लेकिन मसनून तौर पर। और उसका अंदाज ये है कि दो मौके अहम हैं जब इंसान को पता चलता है कि उसकी कितनी तरबियत हुई है। एक है खुशी का मौका और दूसरा है गम का मौका। खुशी और गम, ये दो ऐसे मौके हैं, पता ये चल जाता है कि इंसान की कितनी तरबियत हुई है। और ये बात याद रखिएगा, ये एक उसूल है, और इससे मैं और आप अपनी जिंदगी का जायजा ले सकते हैं कि मेरी और आपकी कितनी तरबियत हुई है। घर में शादी हो रही है, कोई बच्चे की पैदाइश हुई है, या फिर कोई मालो दौलत मिली है, जॉब अच्छी मिल गई है, तनख्वाह में इजाफा हो गया है, बहुत सालों बाद कोई रिश्तेदार दूर से सफर करके आया है, सेहत मिल गई है, फतह की मुसलमानों को खुशखबरी मिली है, कोई भी दिन है, तो ऐसे में मैं और आप जब खुशी मनाने खड़े हैं, तो खुशी मनाते वक्त अंदाज क्या होगा। इस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज्जत जो मुझे और आपको पैगाम देते हैं, वो ये है कि खुशी के मौके पर मोमिन फखर नहीं करता, किबर में मुब्तला नहीं हो जाता। सूरत हदीद आयत नंबर 23, वला तफरहू बिमा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। और नेमतों को पाकर इतराने ना लगो जो खुदा ने तुम्हें दी हैं, अल्लाह ने दी हैं। अल्लाह इतराने वाले और बड़ाई जताने वालों को पसंद नहीं करता। तो एतदाल में रहें। पहला अदब क्या है? इस्लामी हदायात आदाब का ख्याल रखें, अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाएं, और ऐसा कोई काम ना करें जो इस्लामी मिजाज से मेल ना खाता हो। और आप देख लें कि हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह नो कहते हैं, जब अल्लाह ताला ने मेरी तौबा कबूल की और मुझे खुशखबरी मिली, तो मैं फौरन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा। मैंने जाकर सलाम किया। इस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से जगमगा रहा था, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई खुशी हासिल होती, तो आपका चेहरा इस तरह चमकता जैसे चांद का टुकड़ा है, और हम आपके चेहरे की रौनक और चमक से समझ जाते कि आप इस वक्त इंतहाई मसरूर हैं, इंतहाई खुश हैं। इससे क्या बात पता चलती है कि त्योहार के मौके पर, ईद के मौके पर, खुशी के मौके पर हमें खूब खुलकर खुशी का इजहार करना चाहिए, खुशी को मनाना चाहिए, तबीयत को थोड़ा आजाद छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हर कौम के कुछ खास त्योहार और जश्न होते हैं, और वो कौम अपनी हैसियत और अपनी सतह के मुताबिक उस त्योहार को मनाती है, अच्छा लिबास पहनती है, उमदा खाने पकाती है, और दूसरे तरीकों से अपनी जो उसकी अंदरूनी मुसर्रत और खुशी होती है उसका इजहार करती है। और ये इंसानी फितरत का तकाजा है। और जिस कौम के पास कोई फेस्टिवल ना हो, कोई त्योहार ना हो, कोई खुशी का मौका ना हो, तो इसका ये मतलब है कि उस कौम के पास कोई जाब्ता नहीं है, मुकम्मल जाब्ता हयात नहीं है। और इस्लाम में दो दिन ऐसे रखे गए हैं जिसमें खुशी मनाई जाती है, और ये वो खुशी है जो कि हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से पता चलती है। एक है ईद उल फित्र और दूसरी खुशी है ईद उल अधा की, और ये हमारा मजहबी और मिल्ली त्योहार है। और एक बात याद रखें कि इस मौके पर मुसलमान ईद के मौके पर जो कुछ करते हैं, आज मुसलमान जो कुछ करते हैं उसको भी देख लें। ईद का मेला लगता है और तूफान बदतमीजी, ईद की रात चांद रात, इसमें डांस की महफिल और भंगड़ा और बहुत सी बुराइयां जो आज सोसाइटी में रवाज पा गई हैं, चांद रात उसमें लोग क्या करते हैं कि ईद के नाम पर, इस्लामी त्योहार के नाम पर बहुत से गलत काम करते हैं। तो ये दो खुशियां क्यों मनाई जाती हैं, इसकी बुनियाद क्या है? एक ईद उल फित्र रमजान मुबारक के खत्म होने पर यकम शवाल को मनाई जाती है। रमजानुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को तौफीक दी, तो मुसलमानों ने क्या किया, महीना भर रोजे रखे, कुरान मजीद पढ़ा, सहूर में उठे तहज्जुद पढ़ी और उसके साथ खूब दुआएं मांगी, कयामुल लैल किया, तरावी पढ़ी और मुख्तलिफ जिक्र अज़कार और सहरी और अफ्तारी का अजर हासिल करके, मस्जिदों को आबाद करके, दिलों को ईमान से भरकर मुसलमान फिर क्या करते हैं, लैलतुल कदर की तलाश करते हैं, हजारों महीनों से बेहतर जो रात है उसको तलाश करते हैं, वो रात जिसमें इंसानों की किस्मतों का फैसला होता है, क्या रिस्क मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना इंसान जिएगा, और तनज़्ज़ुलुल मलाइकातु वर्रूहु, फरिश्ते आते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं फरिश्तों के झुरमट में और फिर लोगों की मगफिरत का फैसला किया जाता है। तो फिर इंसान क्या करता है कि ईद की शक्ल में वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, रमजान के आखिर में यानी इबादत और रियाजत करने के बाद, मेहनत करने के बाद मुसलमानों को ईद मिलती है और वो ईद है ईद उल फित्र कि अब तुम खुशी मनाओ। इसी तरह जुलहज का महीना आता है, अभी रमजान गुजरा, रमजान गुजरा, ईद उल फित्र गुजरी, थोड़ा ही अरसा गुजरा तो हज की तैयारियां शुरू हो गई और हाजी क्या करते हैं, हज का सफर करते हैं और 8 जुलहज से लेकर 13 जुलहज तक वो हज के जो मुख्तलिफ मनासिक हैं उसको अदा करते हैं, है ना। 8 जुलहज को हज की नियत करके एहराम बांधकर तलबिया कहते हुए मिना जाते हैं, फिर 9 जुलहज की सुबह तक मिना में रहते हैं, फिर 9 जुलहज को तलबिया करते हुए मिना से इरफात जाते हैं, फिर इरफात में जवाल से गुरूब आफ्ताब तक रुके रहते हैं, जिक्र अजकार तोबा अस्तगफार और इरफात का मैदान और इरफात में वकूफ हज का सबसे बड़ा रुकन है और उस दिन अल्लाह ताला ज्यादा गुनाहगारों को माफ करता है, बड़े बड़े गुनाहगारों को माफ करता है। उस दिन शैतान बड़े गुस्से में होता है कि इतनी मुश्किल से इतने गुनाह करवाए और अल्लाह ताला बड़े बड़े गुनाहों को माफ करता चला जाता है। और फिर क्या होता है कि 9 और 10 की रात जो जुलहज की होती है मुसलमान मुजदलफा में काटते हैं और फिर क्या करते हैं कि 10 की सुबह जब हाजी कुर्बानी करता है, एहराम उतारता है और साथ ही क्या है कि 10 जुलहज का दिन ईद का दिन है, तो 10 जुलहज ईद उल अधा है। और जिस तरह रमजान के आखिरी अशरे की रातें बड़ी मुबारक हैं, इसी तरह जुलहज के महीने के पहले 10 दिन बहुत मुबारक दिन हैं। और इन 10 दिनों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक जुलहज के 10 दिनों से बढ़कर कोई दिन नहीं कि जिसमें नेक अमल अल्लाह को ज्यादा महबूब हो। लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह जिहाद भी फी सबीलिल्लाह भी नहीं, फरमाया जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं, इल्ला ये कि कोई शख्स अपनी जान और माल के साथ जिहाद में चला जाए और फिर इन दोनों में से कुछ भी वापिस न लाए। इल्ला रजुलुन खरजा बिनफ्सिही व मालिही सुम्मा लम यरजे मिन ज़ालिका बिशै, बुखारी की हदीस है, जिससे क्या बात पता चलती है कि इन 10 दिनों में जो जुलहज के दिनों से मैं और आप आजकल गुजर रहे हैं ये बड़े मुबारक दिन हैं, ये बड़े अफजल दिन हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इन दिनों में नेकियां कर रहे हैं, अमले सवाले, और अमले सवाले में हर तरह का अमल आ जाता है, नियत हो ठीक हो, वो अल्लाह का हुक्म किया जाए रसूल अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक, तो उसका बदला फिर जन्नत और रब की रजा से कम नहीं है। अल्लाह को अमले सवाले बड़े पसंद है, खा रोजे रखे जाए, खा जिक्र अज़कार किया जाए, बीमारों की इबादत की जाए, जनाजे में शिरकत की जाए, किसी के यहाँ डेथ होगी या ताजियत की जाए, बीमार को खाना पका के खिला दें, पड़ोसियों की खबरगिरी कर लें, आप कुछ भी कर रही हैं, हकूक अल्लाह अदा कर रही हैं, हकूकुल इबाद, तो ये है अमले सवाले और ये अल्लाह को बहुत पसंद है। कभी के दिन बड़े कभी की रातें, तो ये दिन बड़े अफजल दिन है। इन दिनों में जो अमले सवाले करता है वो कौन शख्स है जो नेकी करके इस तरह का अमल कर सकता है, अमले सवाले वाला वो शख्स जो जिहाद पे जाए और शहीद हो जाए, जान भी अल्लाह के राह में कुर्बान कर दी और सारा माल भी अल्लाह के राह में खत्म कर दिया, ऐसा शख्स अयामिल जुलहज में अमले सवाले का अजर पा सकता है। ऐसा शख्स अगर उसने अल्लाह की खातिर जो किया है, तो आप देख लें कि जुलहज के दिनों में, जुलहज के इन खास दिनों में हाजी हज करता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ताजा करता है, मुख्तलिफ हज के मनासिक और अरकान को अदा करता है, तो उसकी खुशी में हमें क्या दिया गया, ईद उल अधा दी गई और हमें तलकीन की गई कि हम भी कुर्बानी करें और ईद उल अधा के दिन कुर्बानी करके अपनी ख्वाहिशात की भी कुर्बानी करें और हम गुनाहों की जो जिंदगी है उसका दफ्तर भी बंद कर दें और इस दिन को जश्न मुसर्रत का त्योहार बनाएं। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे जिसके सर पर अल्लाह ताला ने इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा का ताज रखा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कल्बे मुनीब लेकर आए, जिनके पास कल्बे सलीम था, जो मुत्तकियों के इमाम थे और जो अल्लाह ताला के हर हुक्म पर असलमा की तस्वीर बन गए। सरापा अता बराहिमी नजर पैदा बड़ी मुश्किल से होती है, हवस छुप छुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें। ये दौर अपने बराहिम की तलाश में है, बाहर होके खिजान ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ईद उल अधा मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद की खुशी में और आपने जो हज के अरकान हैं जो अदा किए, तो बीबी हाजरा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में। ईदें कब शुरू हुई? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना गए तो उस वक्त ईदें का आगाज हुआ। हजरत अंस रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो मदीना में बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे, तो अहले मदीना दो दिन मनाया करते थे। वलहुम यौमान यलअबूना फीहिमा, दो दिनों में वो लोग खेल कूद किया करते थे। फकाला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, मा हाजानिल यौमान, ये दो दिन कैसे हैं? ये दो दिन जो तुम खेल तमाशे करते हो इनकी क्या हकीकत और हैसियत है? कालू कुन्ना नल अबू फीहिमा फिल जाहिलिया, साहबा ने कहा कि हम जाहिलियत में इस्लाम से पहले ये दो दिन मनाया करते थे, बस रवाज है हमारे यहाँ का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कद अब्दालकुमुल्लाहु बिहिमा खैरा मिन्हुमा यौमुल अधा व यौमुल फित्र, अल्लाह ताला ने इन दो त्योहारों के बदले में इनसे बेहतर दो दिन तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिए हैं, और एक है ईद उल अधा का और दूसरा है ईद उल फित्र का। यह है सुन्ने अबी दाऊद की रवायत। असल में जो कौमों के त्योहार होते हैं ना, उससे कौमों के अकीदे का पता चलता है, कौमों का अकीदा कैसा है, उनकी तारीख कैसी है, उनका कौमी मिजाज कैसा है। तो अब इस्लाम से पहले वो दो दिन मनाते तो थे, खेल तमाशा करते तो थे, लेकिन ये कि वो जमाना जाहिलियत के दो दिन थे, जाहिलाना मिजाज था उनका, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खत्म करके उनकी जगह ईद उल अधा और ईद उल फित्र की दो खुशियां दी। और ईद उल अधा और ईद उल फित्र किस तरह खुशी के दिन हैं, इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दोनों दिन खाने पीने के दिन हैं, ये खुशी के दिन हैं। दो दिनों में रोजा रखने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, एक ईद उल फितर का दिन और दूसरा कुर्बानी का दिन। ये सही मुस्लिम की रवायत है कि दो दिनों में आपने रोजा रखने से मना कर दिया। कौन इस दिन रोजा रखता है? शैतान इस दिन रोजा रखता है। और मुसलमान क्या करते हैं? इन दो दिनों में खुशी मनाते हैं। फिर आप ये बात भी देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन फितरत लेकर आए, उन्होंने अयाम तशरीक के बारे में क्या कहा? अयाम तशरीकी अयाम अकलिम व शुरबिन व ज़िक्रिल्लाह अज़्ज़ा व जल। अयाम तशरीक खाने पीने और अल्लाह ताला के जिक्र के दिन है, और इससे मुराद है 11, 12 और 13, यानी 9 ज़ुलहज है योम अरफा, उस दिन का रोजा जो है उससे 2 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं, एक गुजरे हुए साल के और एक आने वाले साल के। ये भी इमाम मुस्लिम की हदीस से हमें इस बात का पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे के बारे में क्या फरमाया। आपने फरमाया कि जो शख्स 9 ज़ुलहज का रोजा रखेगा तो अल्लाह ताला उसके 2 साल के गुनाह माफ कर देंगे। सौम यौम अरफता युकफ्फिरु ज़ुनूब सनतैन मादियतिन व मुस्तक़बिला। 9 ज़ुलहज का रोजा जो कि योम अरफात के दिन का रोजा है, गुज़िश्ता और आने वाले 2 साल के गुनाहों का कफारा है। ये भी इमाम मुस्लिम की रवायत है। और अरफा के दिन हाजियों ने नहीं रोजा रखना, लेकिन जो बाकी मुसलमान है ना उन्होंने रोजा रख रहा है। और 2 साल के जो गुनाह माफ होंगे, तो मुफस्सरीन ये कहते हैं, मुहद्दसीन ये कहते हैं कि अल्लाह ताला इसके जरिए छोटे छोटे गुनाह माफ कर देंगे जो इंसानों से खताएं हो जाती हैं, लेकिन गुनाह कबीरा नहीं अल्लाह माफ करेंगे। रही हकूकुल्लाह की बात, तो अल्लाह ताला चाहे तो अपना हक है माफ कर दे। जो हकूकुल इबाद में हमने कमी बेशी की है, किसी का हक मारा है, और जब तक वो इंसान माफ नहीं करेगा तो अल्लाह भी उसको माफ नहीं करेगा। तो क्या करना चाहिए? ये इबादत के दिन है, ये बड़े कीमती दिन है। ये जो जुलहज के दिन आजकल गुजर रहे हैं, इसकी अल्लाह ताला ने सूरत फजर में भी कसम खाई है, वल फजर वलयालिन अशर वशफ़ वल वत्र वल्लैल इज़ा यसर हल फी ज़ालिका कसमुल लज़ी हिज्र। अल्लाह ताला कहते हैं कि सुबह की कसम, जुफ की और ताक की कसम, और रात की जबकि वो गुजरने लगे। क्या किसी अकलमंद के लिए इसमें कोई निशानी है? जो अकलमंद लोग हैं ना वो गौर करते हैं कि ये रातें जो दिन में तब्दील हो रही हैं, ये दिन जो रातों में तब्दील हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो अल्लाह ने कसम खाई है, वल फजर से मुराद ईद उल अधा का दिन है। वल फजर कसम है फजर की, तो इससे मुराद कौन सा दिन है? ईद उल अधा का दिन है। अल्लाह ताला ने उसकी कसम खाकर कहा कि ये दिन बड़ा कीमती दिन है। और बाकी जो अल्लाह ताला ने कसम खाई 10 रातों की, तो उससे मुराद क्या है? ये पूरा अशरा जुलहज और इसके जो दिन है उसके मानी। बाज लोगों ने रमजान का आखिरी अशरे की रातें भी ली हैं, और बाज लोगों ने अशरा जुलहज के इब्तदाई 10 दिन लिए हैं। लेकिन एक बात बड़ी अहम है कि 10 जुलहज तो ईद का दिन है ही, उस दिन खुशी मनानी है, लेकिन इसके साथ साथ जो हदीस मैंने आपके सामने रखी कि ये दिन खाने पीने के और अल्लाह ताला के जिक्र के दिन है, जिसे ही मुस्लिम की रवायत है। तो क्या बात पता चली कि इन दिनों फिर रोजा नहीं रखना चाहिए, है ना? क्या करना चाहिए? ये ईद बड़ी ईद है, इसको इसीलिए बड़ी ईद भी कहते हैं। ये खुशी के दिन है, और कुर्बानी भी की जाती है, एक दिन नहीं की जाती, कितने दिन की जाती है? 3 दिन तक कुर्बानी की जाती है। तो ईद उल अधा के दिन खाने पीने में वुसअत करना, खेलना कूदना, ये रसूल अल्लाह का फरमान है। और इसी तरह ईद उल फितर के मौके पर भी, तो इन सारी बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहकामात हैं, जो आपकी तालीमात हैं, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये बात पता चलती है कि ईदैन के मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया था। सहाबा कहते हैं आपने हमें हुक्म दिया था कि हम उम्दा लिबास पहने, उम्दा खुशबू लगाएं और कीमती कुर्बानी जिबा करें। ईदैन के मौके पर हम अच्छा लिबास पहने, और हमारा लिबास कैसा लिबास होना चाहिए? नया होना चाहिए, और अगर नया ना हो तो अपनी हैसियत के मुताबिक हमारा लिबास है, बेशक धुला हुआ हो या वैसे पहले का पहना हुआ है, बहुत कीमती लिबास है, एक दफा पहनने से ना पुराना होता है ना फट जाता है, आप कितनी दफा चाहे पहन ले। तो आप अपने पहले कपड़ों में से जो अच्छे कपड़े हैं उनको निकाल कर पहने। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ईद के दिन खूबसूरत यमनी चादरें पहनते थे। दूसरी सुन्नत जो आपकी पता चलती है कि ईद के दिन खुशबू लगाना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के मौके पर खुशबू लगाया करते थे, और आपको खुशबू पसंद थी। आपकी एक हदीस भी पता चलती है ना कि आपने कहा कि मुझे पसंद है औरतें और खुशबू, और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई। अच्छा, इसी तरह फिर हमें एक और ईद के दिन की सुन्नत मिलती है, ईद उल फितर के दिन नमाज को जाने से पहले कुछ खाना है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तात तादाद में खजूरें खाया करते थे, 1, 3, 5, 7। ये मुस्नद अहमद और बुखारी की रवायत है। ये नहीं कि कुछ खजूरें, तात तादाद में आप खजूरें खाया करते थे। हजरत बुरैदा रजी अल्लाह ने फरमाते हैं कि ईद उल फितर के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक नमाज के लिए ना निकला करते जब तक कि आप कुछ खा ना लेते। ईद उल अधा के दिन आप उस वक्त तक कुछ नहीं खाते थे जब तक कि आप वापस ना आ जाते। तिर्मिजी इब्ने माजा मुस्नद अहमद की ये रवायत है, और मुस्नद अहमद में तो ये भी है कि आप कुर्बानी के गोश्त में से खाया करते थे, लेकिन इसको रोजा नहीं कहते। अच्छा, अब आप इसकी हिकमत पे गौर करें कि ईद उल फितर के दिन ईद की नमाज से पहले खाना सुन्नत है, और ईद उल अजहा के दिन बाद में आकर खाना सुन्नत है। इसके अंदर हिकमत क्या है? मैं सोच रही थी, मैं कह रही थी कि असल में अल्लाह के हुक्म का अपने आप को ताबे करना मुराद है। पूरा का पूरा दीन हमें एक पैगाम देता है और वो क्या है कि समय नमाताना, वो ये कहता है कि तुम कहो कि अल्लाह हमने सुना और हमने तेरी अताअत की और असलम तु ले रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सरे अताअत खम कर दो। अमन नवा सदकना की अमली तस्वीर बन जाओ, सरे न्याज झुकाया तो फिर उठा ना सके, बस अल्लाह के आगे सर को झुका दिया। अब आप देखें, महीना भर ट्रेनिंग हुई है रमजान के महीने में, सहरी से कुछ नहीं खाते ना, सहरी कर ली अब कुछ नहीं खाना। और मैं सोच रही थी 29-30 दिन जब कुछ नहीं खाया तो 31वें दिन या 30वें दिन जो भी महीने बाद ईद आती है तो बगैर कुछ खाए आराम से जा सकते हैं, आदत ही नहीं होती कुछ खाने की ना, और वैसे भी ईद के दिन कितने काम होते हैं। कहा कि नहीं, अब खा के जाओ। तो असल बात है सरे अतात झुका देना, यानी सर को झुका देना, यानी सरे सर को खम कर देना। और फिर सवा दो महीने तकरीबन फिर हम क्या कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं ना, रमजान में नहीं खा रहे होते और अब इन दिनों खा रहे होते हैं, और अब और कुछ नहीं, चाय का बंदा है एक प्याली पीकर चले जाए, लेकिन रसूल अल्लाह की सुन्नत क्या है कि बगैर कुछ खाए आप गए। तो बात क्या है कि हमें अतात करनी है, जिसमें तेरी खुशी नहीं उसमें मेरी खुशी नहीं, जो अल्लाह ताला ने कहा और अल्लाह के रसूल ने किया, ये है मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए हाजी हज करते हैं और हम भी यहाँ पे कुर्बानी करते हैं, हाजी तो वहां पे बहुत से मनासिक और अमाल अदा करते हैं, हम दूर बैठे हुए हैं तो हम और क्या करेंगे, हम अल्लाह के महबूब, अल्लाह के सिद्दीक, अल्लाह के खलील, अल्लाह ने जिसकी कुरान में गवाही दी कि उसके पास कल्बे सलीम था, मुस्लिम हनीफ थे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिसके बारे में अल्लाह ने रहती दुनिया तक कुरान में लिख दिया वत्ताखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कि जिस जगह खड़े होकर इब्राहिम ने खाना काबा की तामीर की उस जगह को अपने लिए मुसल्ला बना लो, उसके पीछे नमाज पढ़ो। उस वो तो अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो गया, ख्वाब में देखा। तो ए मुसलमानों, तुम भी क्या करो कि तुम भी अपना सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान करने को तैयार हो जाओ। और क्या कुर्बान करना है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी मैं खत्म कर देनी है, अपनी मर्जी खत्म कर देनी है, वही करना है जो के अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो ये है अल्लाह के नबी की सुन्नत। फिर इसके बाद एक और अहम सुन्नत जो हमें पता चलती है, ईद की नमाज पढ़ना, और ईद की नमाज में औरतों का और बच्चों का शामिल होना, शरीक होना, क्योंकि ईद का दिन मुसलमानों का बहुत बड़ा इज्तमा होता है, इस्लाम की शान और शौकत का इजहार होता है, और उस खुशी में सबको शामिल होना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि मैं ईद उल फितर या ईद उल अधा के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गया, आपने नमाज पढ़ाई और फिर खुतबा दिया, इसके बाद आप औरतों की तरफ तशरीफ लाए और आपने वाज और नसीहत की और उन्हें सदका करने का हुक्म दिया। ये बुखारी की रवायत है। फिर हजरत उम्मे अतिया रजी अल्लाह अन्हा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि ईद उल फितर और ईद उल अधा के दिन हम छोटी बच्चियों, जवान घूंघट वालियों और हायजा औरतें जो मेंसेस वाली हैं उनको भी ईदगाह ले जाएं। अलबत्ता जो मेंसेस वाली औरतें हैं वो नमाज की जगह से अलग रहेंगी और मुसलमानों की दुआओं में शामिल होंगी। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज औरतें ऐसी हैं जिनके पास चादर नहीं होती, इतनी गुर्बत का जमाना था, फरमाया जिस औरत के पास चादर ना हो इसकी बहन को चाहिए कि उसको अपनी चादर में ले ले। ये बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद नसाई और इब्ने माजा की रवायत है। तो इससे क्या बात पता चलती है कि तमाम मुसलमानों की जो औरतें हैं और उनके जो बच्चे हैं उनको जाना चाहिए ईद की नमाज में, ताकि काफरों पर भी मुसलमानों की शानो शौकत का इजहार हो, उनका रोब पड़े। ईद का दिन मुसलमानों का त्यौहार है तो इस दिन खुशी मनानी चाहिए और इस्लाम की शानो शौकत का, वकार का और इस्लाम का भरपूर तौर पर इजहार करना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह और रवायत करते हैं कि ईद के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों और बेटियों को ईदगाह ले जाया करते थे। अब आप देख लें कि बाज ऐसे इस्लामी ममालिक हैं वहां पे इस बात का तसव्वुर ही नहीं है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के पास जैसे पाकिस्तान में भी ईद की नमाज होती थी और बकायदा ईदगाह में टेंट लगते थे और नमाज होती थी और हम नमाज पढ़ने जाते थे, और इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। लेकिन अब क्या करना चाहिए कि इस बात को रवाज देना चाहिए। और आप देखें कि ये भी कैसी आजमाइश है कि वक्त के साथ साथ इतनी बड़ी सुन्नत, इतनी अहम सुन्नत मिटती चली जा रही है, और बहुत सी मसाजिद है जहां पे औरतों की नमाज पढ़ने की जगह ही नहीं है। और वैसे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज जो थे वो ईदगाह में जाकर अदा किया करते थे। लेकिन एक बात है, जैसे बाज लोग अपनी औरतों को ईदगाह में नहीं ले जाना चाहते या ईद की नमाज में नहीं लेके जाते, क्यों? इसलिए कि ईद के दिन औरतें बहुत तैयार हुई हुई होती हैं, खूब सजी बनी हुई होती हैं, इसलिए बाज मर्द ले जाना पसंद नहीं करते। लेकिन असल बात क्या है कि जब तैयार हो तो फिर अपने आप को छुपाएं, वला युबदीना जीनता हुन्ना, क्यों अपनी जीनत का इजहार नहीं करती गैर महरमों के सामने, तो अपने आप को छुपा कर चादर ओढ़ कर, हदीस में आपने चादर के अल्फाज पढ़े ना भी आपने, चादर में अपने आप को छुपा कर अपनी जीनत, अपना मेकअप, अपने कपड़े, अपनी ज्वेलरी ईद की नमाज में हम सबको जानना चाहिए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अधा में आकर कुछ खाते थे, तो अगर यहाँ पे कुर्बानी का गोश्त बड़ी देर बाद मिल रहा है, यानी जल्दी नहीं मिल रहा, तो फिर कुछ भी खा ले, और अगर जल्दी मिल रहा है तो फिर जैसे आप कलेजी तनावल करते थे, तो इस सुन्नत पे अमल किया जा सकता है। फिर इसके बाद ईदैन की रातों में कसरत से तकबीरें पढ़नी चाहिए, और ईद उल अधा में अयाम तशरीक के आखिर तक और ईद उल फितर में इमाम के नमाज के लिए निकलने तक तकबीरात कहते रहना चाहिए। तकबीर क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। तो थोड़े बहुत अल्फाज के फर्क से हमें दो तीन तकबीरें मिलती हैं। और क्यों ये तकबीरें पढ़नी चाहिए? सूरत बकरा में अल्लाह ताला ने कहा वस्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मअदूदात, है ना, सूरत आला में कहा वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, इसी तरह सूरत हज में कहा लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, कि तुम इस बात के बदले के अल्लाह ने तुम्हें हदायत दी है तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो, तो तकबीरात कहना। बाज लोग कहते हैं कि अयामे तशरीक 9 जुलहज से लेकर 13 जुलहज तक है। तशरीक ता शीन रा या काफ, काफ कैंची वाला, इसका रूट क्या है? शीन रा काफ। और ये कहते हैं चमकदार को, जैसे सूरज निकलता है मशरिक से, है ना, तो उससे सूरज निकलता है तो रोशनी फैल जाती है, तो अयामे तशरीक क्या है? ये नेकी के लिहाज से चमकदार दिन है, योमे अरफा का दिन। हाजी वहां पे इरफात के मैदान में दुआएं मांग रहे हैं, रो रहे हैं, बड़े बड़े गुनाह किए, सगीरा भी कबीरा भी, और मनाजात है, आहुजारी है, दामन फैलाए हुए हैं, हाथ उठाए हुए हैं, अल्लाह का डर है, और वो गुनाहगार और आसी हैं, और वो दुआएं मांग रहे हैं, और अल्लाह बड़े बड़े गुनाहों को बख्शता जा रहा है, बड़े बड़े गुनाहगारों को माफ करता चला जा रहा है, तो वो तो इतनी बड़ा कीमती है। तो हम जो यहाँ पे रहने वाले हैं वो क्या करें? इरफात के दिन का रोजा रखें और खूब तौबा इस्तगफार करें, अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि हाजी वहां पे आशिक हैं, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इश्क की कहानी को जिंदा कर रहे हैं, है ना, और हम दूर रह कर कुछ अपनी शक्ल उस जैसी बना लें, खुद भी रोजा रख रहे हैं, अपने घर वालों को भी कहें। फिर इसी तरह तकबीर मर्द कहते हैं तो हम औरतें भी कहें। फिर एक और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन रास्ता बदल लेते थे। ये सही बुखारी की रवायत है, एक रास्ते से आप ईदगाह की तरफ जाते और दूसरे रास्ते से वापस आते, ये भी ईद के आदाब में से है। तो आप ज्यादा से ज्यादा रास्ते से गुजरे और उसमें अल्लाह की तकबीर बयान करते हुए आप जाए, अल्लाह का जिक्र करते हुए जाए, तो सारी जगहें आपकी गवाही दें। और एक रास्ते से जा रहे हैं, दूसरे से आ रहे हैं, तो इस्लाम की शान और शौकत का इजहार करें, और यह दरअसल अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अच्छा, अब हम जहाँ ईद पढ़ने जा रहे हैं वो दूर है, तो गाड़ी पे भी जा सकते हैं, जाहिर है कि दूर है, पैदल जा ही नहीं सकते, अगर जिनके घर करीब हैं तो वो पैदल भी जा सकते हैं, तो जैसे भी अमल हो सकता है, लेकिन रास्ता बदला जा सकता है। और ईद की नमाज खुले मैदान में पढ़ना ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमेशा खुले मैदान में आप ईद की नमाज पढ़ते थे, और एक दफा बारिश जब हो गई तो आपने अंदर भी नमाज पढ़ी थी। फिर इसी तरह ईद के दिन दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए। एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई को कहे, तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनका। ये मुस्नद अहमद की रवायत है, अल्लाह ताला हमारी और तुम्हारी इबादत कबूल करे। तो इस तरह सहाबा कराम से मरवी है कि ईद के दिन जब वो एक दूसरे को मिलते तो ये अल्फाज कहते, तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिन। फिर इसके बाद ईद के दिन की एक और अहम सुन्नत क्या है? खाने पीने में वुसत करना और खेल कूद करना, खुशी मनाना। कैसे पता चलता है? जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मदीना के मुसलमान 2 दिन त्योहार मनाते थे तो आपने क्या कहा था कि अल्लाह ने तुम्हें इनके बदले इनसे बेहतर 2 दिन दिए हैं, एक ईद उल फितर का और दूसरा ईद उल अधा का। खुशियां मनाएं इस दिन। और ईद के दिन दो बच्चियां हजरत आयशा रजी अल्लाह के पास शेर गा रही थी। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने जब देखा कि बच्चियां गीत गा रही हैं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने उनको डांटा, उनको मना किया, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह को ये बात बड़ी गलत लगी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो गीत गा रही हैं और शेर गा रही हैं, तो इसलिए आपने डांटा। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अबा बकर इन्ना लिकुल्ले कौमिन ईदा व इन्नल यौमा ईदुना। ये सही बुखारी की रवायत है। अबू बकर, हर कौम ईद मनाती है और ये हमारा ईद का दिन है। इससे क्या बात पता चलती है कि आपने कहा कि इन्हें कुछ नहीं कहो, इसलिए कि ये अपने खुशी के जज्बात का बच्चियां इजहार कर रही हैं और ये मुसलमानों की खुशी का दिन है, ये मुसलमानों की ईद मनाने का दिन है, तो इसलिए इन्हें कुछ नहीं कहो। और एक दफा ईद के दिन कुछ हबशी करतब दिखा रहे थे, आपने ये करतब खुद भी देखे और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को भी अपनी आड़ में लेकर दिखाए, और आप करतब करने वाले थे उनको शाबाश भी देते जाते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा देखते देखते थक गई तो आपने फरमाया, अच्छा अब जाओ, के मौके की मुनासबत से आपने खुशी का इजहार किया, लेकिन इतदाल से आगे नहीं निकलना कि अल्लाह की हदों को तोड़ने लगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद को ताजा करते हुए कुर्बानी भी देनी चाहिए। जो भी साहिब निसाब है ना, जिनको जकात देनी है, उनको कुर्बानी भी देनी होती है, और ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन्होंने ख्वाब में देखा कि मैं अपने बेटे को जिबा कर रहा हूं, और उन्होंने ये ख्वाब अपने बेटे को सुनाया और उससे पूछा, माजा तरा या अब तिफल मा तो मरू सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। और बेटे ने कहा कि अब्बा जान, जो आपको हुक्म दिया गया है आप उसको कर गुजरिए। ये नहीं कहा कि अब्बा जान आप कैसे ख्वाब देखते हैं, आप कैसी बातें करते हैं कि अपने बेटे को जिबा करने का ख्वाब देखे, ये तो बड़े अजीब बाप हैं आप। ये नहीं कहा, बल्कि कहा कि इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फलम्मा अस्लमा व तल्लाहु लिल जबीनी व नादैना हु या इब्राहिम कद सद्दक्त रोया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मोहसिनीन। अच्छा, बाज लोग ये सवाल भी करते हैं कि क्या कुर्बानी करना जरूरी है, हम उसके पैसे क्यों ना गरीबों को दे दें। किसी ने पूछा कि इंडिया में हमारे बड़े गरीब लोग हैं, हम उनको पैसे दे दें, कोई कहता है यहां दे दें, लेकिन एक बात याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कहते हैं कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया तो हमने क्या कहा, कद सद्दक्ता रोया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मोहसिनीन इन्ना हाजा लहुल बलाउल मुबीन वफदैनाहु बिज़िबिन अज़ीम। हमने बदले में फिदिया में एक बड़ी कुर्बानी दी, जन्नत से दुम्बा लाए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वतरकना अलैहि फिल आखिरीन। ये आयत नोट कर ले, इसका तर्जुमा क्या है, अल्लाह ताला कहते हैं और हमने पीछे आने वाली उम्मत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत यादगार छोड़ दी, रहती दुनिया तक लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते रहेंगे और कुर्बानी करते रहेंगे। और ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जिसने कुर्बानी देनी है तो वो जुलहज का चांद देखने से पहले ही अपने बाल काट ले, अपने नाखून काट ले, जो भी गैर जरूरी उसके बाल है। और जुलहज के इन दिनों में ना बाल काटे और ना ही नाखून काटे, और कुर्बानी देने के बाद वो काटे, क्योंकि हाजी वहां पे ये काम कर रहे हैं ना, एहराम की पाबंदियां हैं उन पर। तो अब हम क्या करें, हाजियों की सी शबाहत पैदा करें, है ना, वो जो इश्क का रंग है, वो जो जानिसारी और वफादारी का वो सबूत दे रहे हैं, हम दूर रहकर ये सबूत दें। और कुर्बानी की जो ईद है, जो ईद उल अजहा है, ये मुझे और आपको क्या पैगाम देती है? अहम बात ये है कि ईद के मौके पे भी अल्लाह को भूलना नहीं चाहिए, कि ईद की नमाज पढ़ी तो फजर कजा कर दी, बाकी सारा दिन जब खुशियां मनाई तो जोहर असर मगरिब और इशा का खबर ही कोई नहीं है, उसका पता ही कोई नहीं है, है ना। ये चीज जो है ये जायज नहीं है, ये हद से बाहर निकलना है, खुशी के आदाब का ख्याल ना रखना है। और मैं आपके सामने एक मिसाल रखती हूँ, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने वाकया लिखा कि बगदाद के एक पास एक गांव था और गांव में एक देहाती रहता था। देहाती ने इरादा किया कि बगदाद में जाकर मैं अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात करूं, और आज की तरह का बादशाह तो नहीं होता था और ना ही आज की तरह का सफर था। अब उस बेचारे ने क्या किया कि अपनी बीवी से पूछने लगा, मशवरा किया कि बताओ कि जाता हुआ क्या लेकर जाऊं, कोई तोहफा तो लेके जाना चाहिए बादशाह के पास जो बादशाह के लायक हो और बादशाह उसे देकर खुश हो जाए। अब छोटे से गांव में देहाती शख्स, दुनिया की उसको खबर नहीं, बीवी ने मशवरा दिया कि हमारे घर के मटके में जो पानी है ना, वो नहर का ठंडा साफ शफाफ और मीठा पानी है, ऐसा पानी बादशाह को कहां मुयसर आता होगा, लिहाजा ये पानी ले जाओ। इस देहाती की अकल में बीवी की बात आ गई और अब इसने वो पानी का घड़ा सर पर उठाया। अब वो पैदल का सफर था या फिर ऊंटों पर, अब जा रहा है, रास्ते में मटके पर उड़ उड़ कर मट्टी भी पड़ रही है, मट्टी जम रही है बल्कि, और वहां तक पहुंचते पहुंचते क्या था कि मट्टी की तहें जम चुकी हैं और रास्ते में और भी तिनके वगैरह। बादशाह के दरबार में हाजिरी हुई, हुजूर मैं आपकी खिदमत में एक तोहफा लेकर आया हूं। बादशाह ने कहा क्या तोहफा लाए हो? देहाती ने वो मटका पेश किया और कहा ये मेरे गांव के कुएं का साफ शफाफ और मीठा पानी है, मैंने सोचा कि इतना मीठा और अच्छा पानी आपको कहाँ मुयसर आता होगा, ये इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ, नजराना है, आप इसे कबूल कर लें। बादशाह के देहाती को कहा कि ढक्कन खोलो, जब खोला तो पूरे कमरे में बदबू फैल गई, क्योंकि उसको बंद किए हुए कई दिन भी गुजर चुके थे और ऊपर से मट्टी की तहें जमी हुई थी। अब बेचारा देहाती अपनी सोच के मुताबिक तोहफा, अपनी मोहब्बत अकीदत का इजहार, अब बादशाह जो था, बदबू तो बहुत आई लेकिन वो देहाती था, उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। उसने कहा कि इस घड़े को बंद कर दो। देहाती से कहा तुम माशाल्लाह बहुत अच्छा तोहफा लाए हो, वाकई ऐसा पानी मुझे कहाँ मैसर, उसकी बड़ी तारीफ की और हुक्म दिया कि घड़े को अशरफियों से भरकर, दिरहम से भरकर दे दिया जाए। अब वो खुशी से अशरफियों का भरा हुआ घड़ा लेकर चला गया और बादशाह ने अपने एक नौकर से कहा कि इस देहाती को जाते हुए जरा दरियाए दजला के किनारे से वापस लेकर जाना, दरियाए दजला। अब देहाती बड़ा खुश खुश जा रहा था, बादशाह का नौकर भी साथ था। अब जब रास्ते में दरियाए दजला आया तो देहाती ने दजला को देखकर नौकर से पूछा ये क्या है? नौकर ने कहा ये दरिया है और इसका पानी पीकर देखो। अब जब उसने पानी पिया तो इंतहाई साफ शफाफ और मीठा। अब देहाती को ख्याल आया या अल्लाह, मैं बादशाह के लिए किस किस्म का पानी लेकर गया था, इसके महल के अंदर इतना साफ और शफाफ और आला दर्जे का पानी बह रहा है, तो ये तो उसकी बड़ी करम नवाजी है कि उसने मेरे घड़े को कबूल कर लिया और ऊपर से मुझे तोहफा, दिरहम और दिनार का भरा हुआ घड़ा। मुझे तो सजा मिलनी चाहिए थी कि इतना सड़ा हुआ गंदा पानी लेकर मैं गया था, और बादशाह की करम नवाजी का क्या कहना, और मेरे घड़े को कबूल कर लिया। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये है हमारी इबादत की हकीकत, ये पानी के घड़े की तरह हैं, गंदा पानी भरा हुआ है, मट्टी भी है, गर्दो गुबार भी है, इबादतें तो ऐसी हैं कि मुंह पर मार दी जाएं, कुर्बानी है तो दूसरों को बताते फिर रहे हैं कि मेरी कुर्बानी तो 10,000 की आई, तुम्हारी 6,000 की, अच्छा हम तो 4 कुर्बानियां दे रहे हैं, अच्छा तुम नहीं देते, हमारा दुम्बा बहुत बड़ा है, और मैंने तो तहज्जुद ही पढ़ रही हूँ, मैं तो पूरे 9 दिन के रोजे रख रही हूँ, आपने यौमे अरफा कभी नहीं रखा। यानी किबर, इजहार, दिखावा, और फिर सबसे बड़ी बात कि हमारे दिलों में तकवा नहीं है, जानवर को कुर्बान कर देते हैं लोगों, मेरी बहनों, अल्लाह को ना गोश्त चाहिए, ना खाल चाहिए, ना अल्लाह ताला को खून चाहिए। अल्लाह ताला को क्या चाहिए? अत्तक्वा मिनकुम, अल्लाह को मेरे और आपके दिलों का तकवा चाहिए। जानवर के गले पर छुरी फेर भी दी, लेकिन अगर अपनी ख्वाहिशात पर छुरी ना फेरी, अगर गुनाहों की जिंदगी को खत्म ना किया, अगर खिजां के पत्तों की तरह गुनाहों को झाड़ ना दिया, गुनाहों से दूर ना हो गए, तो उसकी जिंदगी में ना रमजान का चांद आया, ना जुलहज का चांद आया, ना उसने रोजे रखे, ना जुलहज के महीने में इबादतें की। अगर हमारे अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा शऊर ना पैदा हुआ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसी नजर ना पैदा हुई, तो इसका ये मतलब है कि हमारे अंदर इबादत का शऊर नहीं पैदा हुआ। तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि मैं और आप अपने दिलों को पाक और साफ करें, ईमान से भरें। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि हजरत आपकी ईद कब हुई? उन्होंने कहा कि हर दिन वो ईद का है जिस दिन मैं अल्लाह की कोई नाफरमानी नहीं करता। तो खुशी का दिन, ईद का दिन, इबादत का दिन है, कुर्बानी का दिन है, नमाज का दिन है, नवाफिल का दिन है, सदका और खैरात का दिन है, अल्लाह के आगे झुक जाने का दिन है, अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को कुर्बान कर देने का दिन है। ईद उल फितर हो या ईद उल अधा, इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि मैं और आप सब अल्लाह के बंदे हैं, और अल्लाह की बंदगी में मुझे और आपको अपनी जिंदगी को खत्म करना है, जिंदगी को गुजारना है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।